कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम नितलीला प्रवेश विष्णुपाद परिवार्यकाचार्य अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम नितलीला प्रवेश विष्णुपाद परिवार्यकाचार्य अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। जय श्री श्री गौर निताय की जय। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सब वेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के इस प्रातकालीन सत्र में उपस्थित हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री श्री गौर निताय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी श्री श्री राधा गिरधारी के सानिध्य में उनके शरणागत में बैठकर श्रील प्रभुपाद महाराज के अनुगत्य में इस अखिल ब्रह्मांड का सर्वोच्च ग्रंथ, ग्रंथ राज जिसको कहा जाता है, जो श्री कृष्ण का वाणमय स्वरूप है, कृष्ण से अभिन्न है और साथ साथ में कृष्ण में प्रीति प्रदान करने वाला है, जो जीव का सर्वोपरि सर्वप्रथम प्रयोजन है, सर्वोपरि प्रयोजन है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। यह जो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम है, यह कृष्ण प्रेम को प्रदान करता है। ऐसे ग्रंथ का श्रवण करना ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। तो प्रभुपाद महाराज की कृपा से यह प्रतिदिन श्रवण करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में यह हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। तो नित्य क्रम के अनुसार यहाँ भागवत पाठ होता है, उसी क्रम के अनुसार आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 और श्लोक संख्या अध्याय 19 और श्लोक संख्या 20। तो आइए पहले श्लोक का आवृत्ति करते हैं। इस श्लोक में आए हुए पहले शब्द तस्मात् एताम् अहम् त्यक्त्वा ब्रह्मणि अध्याय मानसं निर्द्वन्द निरंकार। आज 19 नंबर श्लोक है, हैं? मेरे को 19 बताया और कल टेंपल कमांडर ने भी 19 लिखाया और आज आदि योग प्रभु ने भी 19 बोला। कल 18 हुआ नहीं हुआ? ना गड़बड़ किया। ठीक है, तो 16 श्लोक का आवृत्ति करते हैं। मैंने पढ़ा तक नहीं, 16 श्लोक। या दुस्तज्जा दुमिति भी जीर्यता या ना जीर्यते ताम तृष्णाम दुख निवाहम शर्म काम द्रुतम तज्जेत। या दुस्तज्जा दुर्मति विजायतो या दुस्तज्ज दुर्मति भिजायतो या न जीयते ताम तृष्णां दुख निवाहां शर्म कामो दुस्तज्जे। या दुस्तज्ज दुर्मति विजीयतो या न जीयते ताम तृष्णां दुख निवहाम शर्म कामो द्रुतं तज्जेत। या दुष्पज्जा दुर्मति विजीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णा दुख निवहाम शर्म कामो द्रुतम तजे। श्लोक में आए हुए शब्दों के अर्थ या जो दुस्तज्जा जिसको छोड़ पाना अत्यंत कठिन है, दुर्मति भी भौतिक भोगों में अत्यधिक आसक्त व्यक्तियों द्वारा, जीर्यता वृद्ध अवस्था के कारण अत्यंत अशक्त के द्वारा भी, या जो ना नहीं जीर्यते नष्ट होती है, ताम ऐसी तृष्णाम इच्छा को, दुख निवाहम सारे दुखों का मूल कारण, शर्म काम अपने सुख का इच्छुक व्यक्ति, द्रुतम शीघ्र ही तज्जे छोड़ दे। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की। जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं उनके लिए इंद्र तृप्ति का त्याग पाना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था के कारण अशक्त व्यक्ति भी इंद्र तृप्ति के ऐसी इच्छाओं को नहीं त्याग पाता। अतएव जो सचमुच सुख चाहता है उसे ऐसी असंतुष्ट इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सारे कष्टों का जड़ है। तात्पर्य, हमने पश्चिमी देशों में वास्तव में देखा है कि जो लोग 80 वर्ष के हो चुके हैं वे भी नाइट क्लबों में जाते हैं और शराब पीने तथा स्त्रियों की संगति करने में काफी धन व्यय करते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी भी वस्तु का भोग करने के लिए पर्याप्त बद्ध होते हैं, किंतु उनकी इच्छाएं तृष्णाएं नहीं भरती किंतु उनकी इच्छाएं नहीं मरती भरती भी नहीं मरती भी नहीं। समय उस शरीर को भी जर्जर बना देता है जो इंद्रिय तृष्टि का साधन है, किंतु वृद्ध तथा आसक्त होने पर भी मनुष्य की इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वह अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता है। अतएव भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य को अपनी काम इच्छाएं त्याग देनी चाहिए, जैसा कि श्री यमुनाचार्य ने बतलाया है। यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नवर सदाधतम रंतु मासित तदवधि बत नारी संगमे स्मरमाने भवती मुख विकार सुष्टु निष्टवनम च। जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित बन जाता है तो उसे कृष्ण के लिए कार्य करने में अधिकाधिक सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति पर विशेषतया विषय भोग पर थूकता है। अनुभवी प्रगत भक्त की रुचि विषय जीवन में नहीं रहती। कृष्ण भावना अमृत में प्रगति के द्वारा ही संभोग की प्रबल इच्छा को दमित किया जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुना वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथंवितं तं सजीवम् साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानिन्ताञ्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणवामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय ताम श्रुतो पंगो मम मंद मत्तेर गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो श्री राधा मदन मोहनो आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तधाम वृंदावनम रम्य काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेन यो कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्रीचैतन्य महाप्रभु मतैदं तत्रादरो न परा। हरे कृष्णा। तो वैसे तो हमको 19वां श्लोक दिया गया था, लेकिन क्रमानुसार आज 16वां श्लोक है। या दुस्तज्जा दुर्मति जीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णान दुख निवाहम शर्म कामो द्रुतम तज्जेत। श्रील प्रभुपाद महाराज श्रीमद् भागवतम के विषय में कहते हैं कि जब तक हम 9 स्कंद तक भागवतम का पठन पाठन नहीं कर लेते तब तक 10वें स्कंद में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये नियम है। क्योंकि जैसे ही हम 10वें स्कंद के प्रारंभ में देखते हैं कि जब महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा किया भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण के बारे में, तो महाराज परीक्षित कहते हैं वहीं पर 10वें स्कंद की महिमा के बारे में, जैसे या 10वें स्कंद में प्रवेश करने के पूर्व ही के बताते हैं, निवृत त्रिशे रूपगीय माना भव औषधि छोत्र मनो विरामा। निवृत त्रिशे, जब तक व्यक्ति भौतिक तृष्णाओं से निवृत्त नहीं हो जाता, निवृत्त त्रिशे तृष्णा, तब तक व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम पर बोलना भी नहीं चाहिए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रवण करने वाले की भी पात्रता यह है, जिन लोगों का भौतिक भोगों में अत्यधिक आसक्ति है वे लोग वास्तव में श्रवण करके भी पूरा पूरा लाभ भागवतम का नहीं उठा पाते, या भगवान के प्रति उनका भक्ति प्रारंभ नहीं होता। तो श्रोता और वक्ता दोनों का कुछ पात्रता है, इसलिए प्रभुपाद जी पहले 9वें स्कंद तक भागवतम का श्रवण किया जाए, बाद में 10वें स्कंद में प्रवेश किया जाए। इसलिए प्रभुपाद जी यह आदेश देते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 10वें स्कंद का श्रवण करना चाहते हैं और उसमें भी विशेषकर भगवान की गुह्य लीला है, माधुर्य लीला है, रास लीला में श्रवण करने का रुचि दिखाते हैं, लेकिन 9वें स्कंद तक का अगर हमको ज्ञान नहीं है और अगर हम सीधा भगवान की रास लीला या दिव्य लीलाओं में प्रवेश करना चाहते हैं तो निश्चित हम उसको नहीं समझ पाएंगे और उल्टा अर्थ निकाल देते हैं। तो जो नवम स्कंद है वास्तव में दसम स्कंद में प्रवेश का द्वार है, बहुत महत्वपूर्ण नवम स्कंद है। कभी कभी कुछ भक्त जब नवे स्कंद के बड़े बड़े राजाओं की कथा सुनते हैं, यहां पर जैसे महाराज ययाति की कथा, तो कई भक्त भी प्रश्न करते हैं कि ये सब राजा इतने बड़े बड़े भोगों में पड़े हुए हैं और ऐसे भोगी राजाओं की कथा भागवतम में दिया गया है। एक बार हमको भक्त ने भी पूछा था अभी कुछ महीने भर पहले, अरे ये तो इतना भोग चाहते हैं महाराज ययाति हैं, जिनका देवयानी से शादी हुआ था और उन्होंने जो शर्मिष्ठा दासी के रूप में मिली उनके साथ भी उन्होंने संभोग किया, इतने पुत्र हो गए और पुत्र होने के बाद ऐसी घटना घटी कि जब देवयानी को पता चला कि इन्होंने शर्मिष्ठा से भी पुत्र उत्पन्न किया, उनके साथ भी सहवास किया, जबकि जब विवाह हुआ था देवयानी का तो ये शर्त रखी गई थी कि शर्मिष्ठा मात्र दासी के रूप में रहेगी, उससे आपको संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इसने, हमारे पति ने शर्मिष्ठा से संबंध रखा तो वो नाराज होकर अपने पिता के घर चली गई। बहुत बड़ा बखेड़ा हुआ, बहुत महाराज ययाति भी पीछे पीछे गए, रुको रुको मत जाओ मत जाओ, लेकिन स्त्री हट वो चली गई। और शुक्राचार्य भी इतने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन वे भी अपने इस योग साधना का और सिद्धि का प्रयोग अपने परिवार के पालन पोषण में ही किया है, अपनी पुत्री की, पुत्री को प्रसन्न करने के लिए, पुत्री की शिकायत सुनकर उन्होंने अपनी सिद्धि का उपयोग किया और अपने जमाई को श्राप दे दिया कि तुम वृद्ध हो जाओ, तुम बहुत कामी हो। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने शुक्राचार्य से कहा कि, या शुक्राचार्य ने भी सोचा कि अरे श्राप देने के बाद उनको विचार आया कि ये क्या किया, मेरी पुत्री तो युवती है और जमाई वृद्ध हो गया, ये तो मैंने अपनी पुत्री का ही अहित किया। और ययाति ने भी याचना की कि अभी तक मैं संसारिक भोगों से विरक्त नहीं हुआ हूं और आपने ये क्या किया, मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए कुछ उपाय करें। तब शुक्राचार्य ने एक ऑप्शन दिया कि तुम अपने वृद्धावस्था को ट्रांसफर कर सकते हो अगर कोई युवा नहीं दे तो। तो यहां भी दिखा जाता है कि क्यों वो युवा होना चाहते हैं, अभी तक उनको भोगों में रुचि है। तो ऐसे जिनका भोगों में रुचि है, चार चार पुत्र हो गए, इतना भोग किया फिर भी उनका रुचि है, ऐसे राजाओं की कथा श्रीमद् भागवतम में क्यों दिया गया। और उसमें भी जबकि अब हम दसवें स्कंद में जाने वाले हैं, उसके पूर्व के स्कंद में ये कथाएं आई, लेकिन ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कथा है। यहां पर हम आगे आगे जैसे श्रवण करते जाते देखते हैं कि जो भी राजा हुए और उनको संसार के सभी भोग उपलब्ध थे और सहज उपलब्ध थे, हमारे जैसा नहीं कि परिश्रम करना है, बहुत कमाना है और तब एक स्त्री का पालन पोषण बड़ा मुश्किल से कर पाएंगे। हम तो इस हमारी स्थिति तो ऐसी है कि भोग प्राप्त करने में भी हमारा भोग हो जाता है, व्यक्ति बेचारा कितना परिश्रम करता है, कितना वो करता है, तब मात्र एक पत्नी का पालन पोषण। लेकिन ये जो बड़े बड़े राजा थे इनको भोग सुलभ थे, ये बहुत ध्यान देने जैसी बात है नव स्कंद में, ये जो प्रसंग है इसमें, इनको संसार के भोग सुलभ थे, कई कई इनकी पत्नियां होती थी और सुंदर सुंदर राजकुमारियों के साथ इनका विवाह होता था, साथ साथ में पूरे पृथ्वी के ये राजा थे तो धन का भी इनके पास कोई कमी नहीं था, तो सारे भोगों की कंचन और कामिनी दोनों इनके पास पर्याप्त था, धन भी पर्याप्त होता था और स्त्रियां भी सुंदर होती थी। और इनका, इन राजाओं ने भोग किया लेकिन अंत में हम देखेंगे कि इनका क्या, इन भोगों के बारे में इनका निर्णय क्या, ये मुख्य बात दिया गया है कि संसार का जो भोग उन्होंने किया और उस भोग के द्वारा इन्होंने क्या अपना अनुभव प्रस्तुत किया, ये इस स्कंद का सार ये है इस बात। क्योंकि मनुष्य का व्रति जो है, मन जो है, भौतिक भोगों में प्रायः लिप्त रहता है। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता भौतिक विषयों में या भौतिक भोगों में लगा लिए मनुष्य या किसी भी जीव को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। हमारा मन जो है स्वतः संसारिक विषयों में जाता है, और यहां तक कि कभी कभी हम प्रयास करते हैं, जैसे जप करने बैठ जाते हैं और जप करते समय ऐसी इच्छा होती है कि हमारा मन भगवान में लग जाए, लेकिन बिल्कुल उल्टा होता है, जप करते समय भी हमारा मन विषयों में चला जाता है, बलात चला जाता है। जैसे गोपियां कहती हैं उनके विरुद्ध हमारा मन, गोपियां जो थी वो चाहती थी कि हमारा मन कृष्ण से थोड़ा हट जाए, कम से कम हम घर का तो काम ठीक से करें। घर का काम ठीक नहीं कर पाती थी, क्यों? क्योंकि कृष्ण के बारे में उनका चिंतन चलता रहता था, तो घर के गड़बड़ी होता था, उल्टा सीधा काम कर लेती थी। तो वे चाहती थी कि हमारा मन कुछ समय के लिए तो कृष्ण से हटे ताकि हम घर का काम ठीक से करें, लेकिन वो कुछ समय के लिए भी कृष्ण से मन नहीं हटता था। तो हमारा स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है कि कुछ समय तो हम चाहते हैं कि 16 माला तक तो हमारा मन भगवान में लगे, लेकिन वो नहीं लगता, हट ही जाता है। तो स्वतः हमारा मन भौतिक विषयों में चला जाता है, भौतिक भोगों की कामना रहती है, और प्रत्येक जीव वो भोगना चाहता है, विशेषकर स्त्री भोग, कंचन और स्त्री भोग में विशेष जो इस सब भोगों का ध्रुवी पॉइंट है वो है स्त्री। प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में लगते हैं कि स्त्री एक ऐसा विषय है कि बड़े बड़े विद्वानों का मन भी दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार ये मन जो जाता है, लेकिन स्त्रियों का भोग किया, संसार का भोग किया, धन सुख सब भोग करने के बाद इन राजाओं ने क्या निर्णय दिया, ये बात हमारे लिए मुख्य पॉइंट, मुख्य ये है नवे स्कंद का सार। और जब तक हम इसको नहीं समझते हैं तब तक हम दसवें स्कंद में जाने के लिए योग्य नहीं होते हैं। तो नवे स्कंद का सार यह दिया जाता है कि संसार के भोग करते व्यक्ति कितना भी भोग करे वो कभी इन भोगों से संतुष्ट नहीं होता है, और जब तक ये भोग भोगने की इच्छा हमारे अंदर प्रबल रहती है तब तक वास्तव में व्यक्ति इन भोगों से निवृत्त भी नहीं होता है और संतुष्ट भी नहीं होता है। इस बात को विशेष इस अध्याय में, इसी अध्याय में बताया गया है। तो महाराज याति कहते हैं या दुस्तज्जा दुर्मति, दुर्मति कहते हैं कि उस दुर्मति मतलब जो मति कृष्ण को छोड़कर उनसे दूर ले जाने वाले विषयों में लगती है उसको दुर्मति कहा गया है। एक होता है सुमति और एक होता है दुर्मति या कुमति। जो मति मतलब बुद्धि, जो बुद्धि हमको कृष्ण से दूर ले जाए वह वास्तव में दुर्मति है। तो ऐसी दुर्मति दुस्तज्ज्या, दुस्तज्ज्या का अर्थ कई लोगों ने इसको त्यागा है ये हम जानते हैं, लेकिन दुस्तज्ज्या दूसरे लोगों के लिए जिसको त्यागना बड़ा कठिन है, लोगों के लिए इसको त्यागना बड़ा कठिन है दुर्मति, इसको संसार भोगों की भोगने की जो मति है हमारी इच्छा है इसको त्यागना बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है। यहां पर देखा गया है कि कभी कभी लोग संसार को त्याग देते हैं, घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि कभी पत्नी को भी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं तो चाय नहीं छूटता है। ये हमारा मत ही ऐसा है, बीड़ी नहीं छूटता है। और कभी कभी ऐसे साधुओं को हम देखते हैं, साधु का वेश धारण किया वैरागी, और कहते हैं सुबह सुबह में एक 5 रुपया तो दे दो हमको चाय पीना है, ऐसा देखा जाता है कभी कभी मांगते हैं। एक चाय पिला दो। तो कितना बड़ा मतलब भोगों का जो हमारा मत, इसको त्यागना कितना कठिन है, कहीं ना कहीं अटक जाता है, इसको त्यागना बहुत दुष्कर है। यहां तक कि जीर्यते या न जीर्यते, जीर्यते मतलब ये शरीर जीर्ण हो जाता है, इंद्रियां भी जीर्ण हो जाती हैं, वृद्धावस्था आ जाती है तो आंखों से ठीक से दिखता नहीं, फिर भी वो चार टीवी देखने बैठ जाता है, चश्मा लगा कर भी स्त्रियों को देखने के लिए चश्मा लगा देता है। शरीर जर्जर होता है फिर भी ये जो भोगने का इच्छा है ये जर्जर नहीं होता, ये जवान रहता है। जैसे लोक में कहते हैं शरीर बुढ़ा हुआ है, जीव बुढ़ा नहीं होता है, जीव की जो कामना है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। जीव फिर जहां जीर्यते, जीव जीर्ण हो जाता है, शरीर जीर्ण हो जाता है, इंद्रियां जीर्ण हो जाता है, इंद्रियों में शक्ति नहीं रहती, फिर भी न जीर्यते, फिर भी वो कामनाएं वो इच्छाएं न जीर्यते, वे इच्छाएं जीर्ण नहीं होती हैं, खत्म नहीं होती हैं, पूरी नहीं होती हैं। और ताम तृष्णा दुख निवार, यही तृष्णा जो है यही वास्तव में दुखों का कारण है। संसार में जीव के दुख का कारण क्या है? असत तृष्णा, असत विषयों को भोग, संसार को भोगने की जो कामना है यही जीव के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है, हैं? और दुख भी है शर्म कामो द्रुत त्यजे, शर्म कामो जो भोग भोगने की इच्छा है, काम इच्छा है, वही वास्तव में इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। ये निर्णय अब भोग भोगने के बाद महाराज जी याति देते हैं। संसार के भोगों को कितना भी भोगा जाए वास्तव में आदमी इससे संतुष्ट नहीं होता है, और इसको भोगने की कामना जब तक बनी रहती है तब तक इसको छोड़ भी नहीं सकता है। इसलिए व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए कि वो इस संसार के भोगों से किस प्रकार निवृत्त होना है, इसके लिए प्रयास कर, जब तक स्वयं ये निर्णय नहीं करता है। अब महाराज याति ये स्वयं निर्णय पर आ रहे हैं, स्वयं देख लिया कि नहीं, इन भोगों में कोई सुख नहीं है, आनंद नहीं है, और इसमें संतुष्टि भी नहीं है, ये उन्होंने रिलीफ स्वयं ये अनुभव किया है, ये अपना अनुभव बता रहे कि ये भोगों में कोई सुख नहीं है। एक महात्मा लोग इसके विषय में बहुत कथा बताते हैं कि एक राजा था जिसके अनेक पत्नियां थी, और अनेक पत्नियों से अनेक पुत्र उसने उत्पन्न किए। सारे पुत्र जब जवान हो गए और इस प्रकार उसका सांसारिक भोगों से भोगते कर वो विरक्त हो गया कि वास्तव में इन भोगों में कोई सुख नहीं है, और बिल्कुल उसको वैराग्य हो गया, और तुरंत वो राज्य को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया, वन में जाकर मैं भजन करूंगा। तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, जो प्रमुख मंत्री था उसको बुलाया, और सेनापति को बुलाया, और दोनों को बुलाकर कहा कि हालांकि मैं प्रातः भोर में चला जाऊंगा और मैंने राज्य को अभी तक किसी को दिया नहीं है, क्योंकि मैं इस राज्य के भोग को, राज्य के कारण सुख और भोग और इस सब को भोग चुका हूं, इसलिए वो निर्णय दे दिया कि वास्तव में ये संसार का भोग करना ये बुद्धिमानी नहीं है, तो मैं इस राज्य सिंहासन पर किसी को बिठाकर नहीं जा रहा हूं, इसलिए कि इस राज्य सिंहासन पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति बैठे, तो ये कार्य मैं तुमको सौंप कर जाता हूं कि तुम परीक्षा लेकर कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य है, उसका निर्णय तुम उसकी परीक्षा लेकर करोगे, ये कार्य मैं तुमको सौंप कर मैं वन में भजन करने के लिए चला जाता हूं। तो देखिए उस राजा का भी निर्णय था कि राज्य मेरे पास था, मैंने राज्य का भोग किया, लेकिन राज्य का राज्य को भोगने और राज्य के भोगों को भोगने में कोई सुख नहीं है, वास्तव में ये जीव के लिए दुखदायी है और निर्णय करके वो चले गए। तो ये दूसरे को राज्य पर क्यों बिठाना चाहते हैं? वास्तव में जैसे प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि हे वत्स, आज तुमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसमें जो सबसे श्रेष्ठ तुम मानते हो, जिसको श्रेष्ठ मानते हो, उस ज्ञान को हमें कहो, उस बात को बताओ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, तत्साधु मन्ने असुर वर्य देही नाम, सदा समुदिग्न ध्याम असत ग्रहा, हित आत्मपात गृह अंधकूपम वनोगतम यद हरिम आश्रय। ये देखिए, ये श्लोक जो है प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, तत् साधु मन्ये, साधु मतलब अच्छा, मन्य मैं मानता हूं, हे असुर राज, हे पिताजी नहीं कहा, हे असुर राज, मैं सबसे अच्छा इसको मानता हूं। तत् साधु मन्ये असुर वर्य देहि, हे असुरों के राजा, पिताजी ना कहकर असुरों के राजा कहते हैं। असुरों के राजा क्यों कहा पिताजी ने? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा था वत्स, हे मेरे पुत्र, लेकिन उन्होंने पिताजी नहीं कहा। लगभग वहां पर देखते हैं कहीं पर पिताजी ऐसा पूरे अध्याय में उल्लेख नहीं। कुछ भक्त लोग बताते हैं कि पिताजी इसलिए नहीं कहा, अरे उनको क्या पिताजी कहना है जो भक्ति में बाधक है, हमको भक्ति करने में बाधक है, खुद भी भक्त नहीं है, हमको भी भक्ति नहीं करने देते। तो वास्तव में वो पिता बनने के योग्य नहीं, पिता न शस्या, उसको पिता नहीं बनना चाहिए, ये तो भक्ति में बाधक है। असुरों के राजा, इनको अहंकार है इसलिए असुर राज। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हुआ कि ओ, हमारा पुत्र तो समझ रहा है कि हम राजा हैं, वास्तविक वो भी नहीं समझ पाया कि हमको पिताजी नहीं कह रहा है क्यों। तो हे असुर राज, मैं इसको अच्छा मानता हूं, क्या? देही नाम, जिन्होंने इस देह को धारण किया, देह तत्साधु ने असुर वर्य देही नाम, देही नाम मतलब जो ये शरीर था, यहां पर देही शब्द शरीर के भी अलग अलग कहीं कहीं पर नाम आते हैं उस प्रसंग के अनुसार। ये भागवतम इतना पूर्ण ग्रंथ है कि देखिए, देही नाम शब्द आया, देही नाम का अर्थ होता है देह, दहा से देह बनता, दहा, दहा का अर्थ समझते हैं, दहा जैसे कहें अग्नि दाह, उसको अग्नि को ताप देकर जला दिया गया, तो देह दाह का अर्थ होता है ताप, जो दुख देता है। तो यहां कहते देही नाम, जिन जीवों ने यह दुख देने वाला शरीर धारण किया है, ये शरीर दुख दे, क्या क्या दुख देता है? सदा उद्विग्न, हमेशा मन उद्विग्न रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, क्यों? धियाम असत ग्रह, हमारी बुद्धि ने असत विषयों को पकड़ के रखा है, इसलिए मन हमेशा उद्विग्न रहता है। असत तृष्णा के कारण, संसार के भोगों को भोगने के कारण मन जो हमारा है वो हमेशा उद्विग्न रहता है, चाहे वो भोग मिल जाए चाहे ना मिले। ये बहुत समझने जैसी बात है, संसार के भोगों को भोगने के लिए हमारा मन हमेशा उद्विग्न रहता है। ऐसा नहीं कि भोग मिल जाए तो शांत हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा है, हमारा जो मन है वो कैसा है कि किसी विषय को भोगना चाहता है। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, हम मार्केट से जा रहे हैं और देखा कि शो केस में बहुत अच्छा मोबाइल है, मोबाइल पीस है, तो उसको देखते हैं, मोबाइल पड़े तो एक मोबाइल उसको चॉइस करते हैं, ये बहुत अच्छा है, तो वो उसको ले लेता है, खरीद लेता है, खरीद कर अपने पास रखता है, पास रख कर कुछ दिन वापरा और कुछ दिन के बाद दूसरे व्यक्ति के हाथ में देखता है दूसरा मोबाइल, तो उसको लगता है ये बहुत अच्छा है ना, ये बहुत अच्छा है। तो तुमने लिया वो, कोई क्यों अच्छा नहीं है वो, तुम पहले शोकेस में पड़ा तब तो बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छा है, अब तुम्हारे पास आ गया तो तुम क्यों कहते हो ये अच्छा नहीं? ये मन का स्वभाव, मन हमारा उसी विषय में जाता है जो हमारे पास नहीं है, और जो विषय हमारे पास आ जाता है तो उससे वो संतुष्ट नहीं होता है। ये मन का स्वभाव। इस स्वभाव को ये बड़े बड़े कंपनी वाले बहुत अच्छी तरह से हमारे हम हमारे मन के स्वभाव को नहीं जानते, लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरर है ये बहुत अच्छी तरह से जानते। इसलिए देख नया कलर नया मॉडल, वस्तु वही है, इसमें कोई है? वस्तु वही होती है, गाड़ी गाड़ी तो वही है, कलर चेंज कर देते हैं मॉडल चेंज कर देते हैं। तो व्यक्ति सोचता है अब ये मारुति 800 को फेंको, ये गंदा मॉडल है, ये नया मॉडल है। और जब खरीदा तब वो उस पर उसका मन उसमें था, और वो जब वो उसके पास आ गया तो अब वो मन उस पर संतुष्ट नहीं रहा। तो सब विषयों में मन की यही स्थिति है कि जो भोग हमको नहीं मिलते हैं उनके प्रति मन आसक्त रहता है, और जो भोग मिलता है तो उससे वो संतुष्ट नहीं होता। इसलिए संसार का भोग मिले या न मिले सदा उद्विग्न दिया, हमारा मन सदा उद्विग्न रहता है। क्यों? असत कृष्णा है, ये असत विषयों को लेकर तृप्त होना चाहता है इसलिए तृप्त नहीं होता है। असत विषयों से मन तृप्त नहीं होता, तो वो भोग मिले या न मिले मन हमारा हमेशा उद्विग्न रहता है। सदा उद्विग्न ध्याम असत, क्योंकि हमारी बुद्धि ने असत वस्तुओं को पकड़ के रखा है। वो हम सोचते हैं कि ये भौतिक वस्तुएं हमको सुख दे देगी, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। वो सुख मिलता नहीं, वो वस्तु मिलती है सुख मिलता नहीं, इसलिए मन हमेशा उद्विग्न रहता है। एक बार जब अलेक्जेंडर कई देशों को जीतकर भारत में होकर जा रहा था, तो भारत से जब वो जा रहा था तो कश्मीर से निकल रहा था, तो उसने अपना खजाना लूटा हुआ और सैनिक सब साथ में थे। उसने जंगल में देखा कि एक साधु बैठा हुआ है, तो वैसे तो वो अलेक्जेंडर विश्व विजेता हुआ है तो वो जानता था कि भारत के जो साधु होते हैं उनसे कुछ ज्ञान लेना चाहिए, वो बड़े चमत्कारिक होते हैं। तो ये सोचकर वो पड़ाव डाला और वो साधु के पास गया, और साधु के पास जाकर कुछ ज्ञान हासिल किया, उनका संग किया, ज्ञान हासिल किया, और कुछ ज्ञान लेने के बाद फिर वो अब आगे बढ़ा दूसरा देश जीतने के लिए। तो साधु ने भी सोचा कि ये हमने इतना ज्ञान दिया फिर भी अभी तो ये तो दूसरा देश जीतने के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन वो राजा था तो उसने सोचा कि इस साधु से मैंने कुछ ज्ञान लिया है तो उसको कुछ दक्षिणा देना चाहिए। साधारण लोग भी जहां ज्ञान लेते हैं तो कुछ दक्षिणा देते हैं, तो मुझे दक्षिणा देना चाहिए। तो अलेक्जेंडर ने सोचा, अपने पहले उन साधु से कहा कि महाराज मैं आपको क्या दक्षिणा प्रदान दूं, आप जो चाहिए मांगिए, मैं आधे विश्व का राजा हूं। तो उसने सो ओह बहुत अहंकार है, आधे विश्व का राजा हो फिर भी अभी तो बाकी है आधा विश्व, मतलब इसलिए कह रहा है कि आधा विश्व जीतना बाकी है। तो उस साधु ने एक पात्र दिया ऐसा थोड़ा कि लो इसमें कुछ आटा चावल डाल के दे दो। आटा चावल, और वो भी इतना छोटा में? अरे मैं राजा हूं तुम हमारे पास आटा चावल मांग रहे हो? बलि महाराज की तरह, मैं राजा हूं और मैं आपको हीरे मोती धन क्या क्या नहीं दे सकता हूं। जैसा बलि महाराज भगवान वामन देव से कहते हैं, मैं त्रिलोकानाम ईश्वर हो एक, मैं तीन लोक का एक ईश्वर हो, तुम मेरे पास तीन कदम भूमि मांग रहे हो, ये तो मेरा इंसल्ट है। तो ये अलेक्जेंडर ने भी कहा कि तुम मेरे पास आता था, मैं हीरे मोती, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको हीरे मोतियों से भर के दे दू। तो अलेक्जेंडर ने अपने सेवक को आदेश दिया कि जाओ अपने खजाने में से इसको भर के दे दो। तो वो गया और अपना जो सेवक था वो खजाने में से डालने लगा, उसमें वो था इतना जो पात्र दिया वो इतना, तो डाला डाला आधा खजाना डाल गया फिर भी वो आधा का आधा भर नहीं रहा है। तो वो सेवक परेशान हो गया कि ये क्या बात है, वो भर नहीं रहा है। तो अलेक्जेंडर के पास गया, बोला महाराज ये कुछ गड़बड़ लगता है, ये भर नहीं रहा है, आधा हो गया। तो अलेक्जेंडर समझ गया कि ये उस साधु का कुछ चमत्कार है। तो साधु के पास गया, महाराज क्या बात है, ये मेरा आधा खजाना डाल दिया, ये भर नहीं रहा है, फिर भी क्या चमत्कार है। तो साधु ने कहा, ये मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये आदमी का खोपड़ी का बना है, इसमें पूरी दुनिया डाल दे ये भरेगा नहीं, ये आदमी का खोपड़ी ऐसा है, चाहे संसार के भोग मिल जाए, संसार का धन मिल जाए, वो भरता नहीं है कभी भी, इसलिए सदा उद्विग्न, वो उद्विग्न ही रहता है, जितना भी मिला उतना कम है। एक फ्लैट वाला भी बोलता है कम है, दो वाला भी कम है, बेचारा 7 फुट के स्क्वायर फुट में रहता है वो भी बोलता है कम है, और 6000 स्क्वायर फुट के फ्लैट में रहता है वो भी बोलता है कम है। तो ये आदमी की खोपड़ी का बना हुआ जो पात्र है वो कभी भरता नहीं है, पूरी दुनिया उसमें डाल दो तो भी भरता नहीं। तो सदा उद्विग्न धियाम असत ग्राह, असत वस्तुओं को ग्रहण किया है, इसलिए ये हमारा खोपड़ी है जो हमेशा उद्विग्न रहता है, सदा उद्विग्न धियाम असत ग्राह। तो क्या करना चाहिए, और आगे बताए, हित आत्मपात, मैं इस शब्द पर बोल रहा हूं कि वो राजा ने क्यों दूसरा राजा बनाना चाहा। हित आत्मपातम गृह अंधकूपम, अरे महाराज असुर राज, ये घर गृहस्थी है जो है ये इसमें गिरकर, ये तो ऐसा अंधा कुआ है, घर गृहस्थी जो है ये ऐसा अंधा कुआ है कि जिसमें जो व्यक्ति गिर जाता है तो उसको अपने आत्मा का हित के बारे में क्या कहाँ विचार आता है कि मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा, मैं कौन हूँ, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, इसका कहाँ उसको पड़ी होती है। वो तो बस परिवार पालन पोषण, परिवार पालन पोषण में इतना डूबा हुआ रहता है कि ना तो उसको सुख मिलता है और ना ही उसके चार दीवारी के बाद उसका मन बाहर की कोई सोचता है। और कुछ लोग तो सीधा बोल देते हैं, ये परिवार पालन पोषण करना यही सबसे बड़ी सेवा, और क्या गृहस्थी के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सब ये मैं तो हित आत्मपातम गृह अंधकूप, ये घर गृहस्थी तो ऐसा अंधा कुआ है जिसमें गिरने के बाद बाहर का वस्तु या आत्मा के बारे में कोई व्यक्ति कभी सोच रहा नहीं। संडे को भी मंदिर नहीं आ पाते हैं, संडे को भी नहीं सोच पाते हैं, इतना सुविधा दिया गया है, लेकिन उनके उनके मन में है ऐसा विचार ही नहीं है, घर की चार दीवारी से उनका मन आगे जाता ही नहीं, जिसको ग्रह मेदी नाम कहा गया है, ग्रह मेदी नाम, वो सोचता है यही कंपटीशन चलता रहता है, इसने इतना गाड़ी ला दिया तो मुझे क्या करना है, अब इससे दो गाड़ी ला, इसने बड़ा फ्लैट लिया तो मुझे इससे बड़ा, ये बस ये कंपटीशन चलता है, दूसरा कोई, इसको ग्रह मेदी कहते हैं। तो हित आत्मपातम गृह अंधकूपम, घर गृहस्थी के अंधे कुएं में जो पड़ गया है वो, तो वनोगतम यद हरिमाश्रय, इसलिए हे असुर राज वन में चला जाना चाहिए और हरि का भजन करना चाहिए, मैं सबसे इसको अच्छा मानता हूं। लेकिन यहां पर हमको प्रश्न हुआ था, हाँ हमको प्रश्न होता है कि प्रहलाद महाराज ने जो ये कहा कि गर्भगृहस्थी अंधा कुआ है और वो 5 वर्ष के बालक थे तब ये बात कहा, और उसी प्रहलाद महाराज ने शादी किया और गर्भगृहस्थी में गए, है ना, प्रहलाद शादी किया, और यहां तक प्रसंग मिलता है कि बलि महाराज उनके पोत्र थे, पुत्र नहीं पोत्र, प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन और उनके पोत्र हुए बलि महाराज, और बलि महाराज जब उनके पोत्र थे तब तक भी प्रहलाद महाराज उस घर में थे, है ना, जब वामन देव आए तो प्रहलाद महाराज भी वहां आए थे, तो थे मतलब वहां पर हाजिर, तो घर गृहस्थी बसाए और वो घर में रहे, जबकि हिरण्यकश्यप को ऐसा बता रहे हैं कि वनोगतम यद हरिमाश्रय, वन में चला जाना चाहिए, लेकिन खुद तो पोत्र होने तक घर गृहस्थी में थे। तो कहने का अर्थ है कुछ कुछ शिक्षा है इसमें, वास्तव में उन लोगों के लिए घर गृहस्थी ही अंधा कुआ नहीं है जो घर गृहस्थी में रहकर भगवान की सेवा पूजा ठीक ठीक या भजन करते हैं, उनके लिए घर गृहस्थी अंधा कुआ नहीं है, घर गृहस्थी उनके लिए अंधा कुआ है जो घर गृहस्थी में रहकर मात्र कुटुंब पालन को ही अपना कर्तव्य समझते, बस उसके आगे नहीं जाते, आत्मा के बारे में भगवान के बारे में जिनकी कोई सोच नहीं है उनके लिए तो वास्तव में वो अंधा कुआ ही है। लेकिन घर गृहस्थी में रहकर भगवान की सेवा पूजा भजन माला सत्संग होता है तो उनके लिए वो अंधा कुआ नहीं। तो इस प्रकार वो जो राजा था वो गया, लेकिन वो चाहता था कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस राज्य सिंहासन पर बैठे, इसलिए ये निर्णय उन्होंने मंत्री और सेनापति पर छोड़ा। वास्तव में पहले के जो राजा होते थे वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्तियों को मंत्री बनाते थे, ऐसा जैसा मंत्री नहीं होता था। मंत्री जो होते थे वो राजा से भी, एक मराठी में कोई कहावत है कि मंत्री जो होता है वो राजा से भी श्रेष्ठ होता है, उसको मंत्री बनाया जाता है ना। जैसे जो हुसैन शाह थे उन्होंने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को प्रधानमंत्री बनाया था, तो वे उससे भी बहुत बुद्धिमान थे। मंत्री राजा से भी बुद्धिमान होता है। एक बार क्या हुआ, ये राजा अपने बेटे के साथ चर्चा कर रहा था, तो बेटे ने जिद किया कि पिताजी जो जो हाथी है उसको उस मटके में डालकर दिखाओ, तुम राजा हो तो। राजा में चिंता में पड़ गया कि ये बच्चा हट कर रहा है कि हाथी को मटके में डाल कर, हाथी को मटके में कैसे डाला जा सकता है। वो तो परेशान हो गया राजा तो, और बच्चा जिद नहीं छोड़ रहा था, नहीं हाथी को मटके में डालो। तो वो गया तो बोला, मंत्री को बुलाया, बोला परेशान हो, एक सलाह चाहिए। बोला क्या, बच्चा बहुत जिद कर रहा है कि हाथी को मटके में डालो। तो मंत्री से सलाह लिया, मंत्री ने कहा ठीक है बुलाओ बच्चे को आपके। बच्चे को बुलाया और एक कागज पे हाथी का चित्र बनाया और वो कागज को मोड़ कर मटके में डाल दिया मंत्री ने। तो बच्चा हाँ हाथी गया मटके में। तो मंत्री जो होता है वो राजा से भी बुद्धिमान होते हैं, उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है। इसलिए राजा ने वो मंत्रियों को कार्य सौंप दिया कि ये कार्य तुम्हारा है। तो मंत्रियों ने कहा ठीक है। उनके अनेक पुत्र थे, उनमें से एक एक का परीक्षा लेना प्रारंभ किया। पहले एक पुत्र को बुलाया और कहा कि राजा तो चले गए हैं लेकिन अब कौन राजा बनेगा इसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर, इसलिए हम आपको राजा बनाते हैं, लेकिन फिलहाल हमको आपको 2-3 साल का राजा बनाएंगे और 3 साल के बाद आपको इस जो शहर का सबसे बड़ा घनघोर एक जंगल है उसका नाम दिया था, बहुत घनघोर जंगल था जिसमें इतना घना झाड़ी था कि उसमें जंगली पशु रहते थे और बहुत घना झाड़ी था, हिंसक पशु रहते थे। तो 3 साल तक आप राज्य का भोग करेंगे, आपके आदेश का पालन करेंगे हम लोग मंत्री और सेनापति, और 3 साल के बाद आपको उस घनघोर जंगल में डाल दिया जाएगा। अगर आपको शर्त मंजूर है तो कल आपका राज्याभिषेक होगा। तो उसने सोचा कि कल किसने देखा है, 3 साल तक तो राजा बन जाए और संसार का भोग कर लें और फिर राजा बनने के बाद देखा जाएगा। लेकिन 3 साल तो हमको मिल रहे हैं ना भोग करने के लिए, अभी तो हमारे पास है नौकरी भी है, घर भी है, जवानी भी है, तो भोग कर लें। बाद में लोग कहते हैं नरक में जाओगे, ये होगा वो होगा, किसने देखा है, अभी तो भोग कर लें। इस सोचकर वो तैयार हो गया था। हाँ ठीक है, सुबह उनका राज्याभिषेक हो गया, राजा बना दिया गया और मंत्री और सेनापति दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे, महाराज क्या आदेश है। बोला हमारे राज्य में सबसे सुंदर सुंदर राजकुमारियां और कन्याएं कौन हैं, पहले हम उनसे शादी करेंगे। राजा का आदेश हुआ, सुंदर सुंदर राजकुमारियां जो थी प्रस्तुत की गई, उन्होंने शादी किया, शादी करके अब संसार का भोग प्रारंभ करने लगे। बोला अभी हमारे बंगले में ऐसा फर्नीचर होना चाहिए, ऐसी हमारी गाड़ी होनी चाहिए, रोज रोज पता था कि एक दिन तो हम जाए तो तीन जाए उसके पहले हम सारा भोग भोग लें, तो रोज भोगों की भोगे के लिए सामग्रियों का आदेश, स्त्रियों का आदेश देते रहे और संसार का भोग करते 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 3 साल समय बहुत ही तुरंत बीत जाता है। समय जो है रात और दिन बीतते, हमारी जो आयु है उसको रात और दिन जो है काटते रहते हैं, पता नहीं चलता है। आप सोचिए हमारा इतना आयु हो गया, क्या किसी को पता चला, कुछ आवाज भी हुआ, कुछ नहीं, किसी का 40 साल किसी का 50 साल चला गया लेकिन पता नहीं चला। तो 3 साल तो भोग करते करते भोगों में इतने प्रवृत्त थे कि कुछ पता नहीं चला और 3 साल पूरे हो गए और सुबह आ गए। जब राज सिंहासन पर बैठे और मंत्रियों ने कहा, महाराज आपका आपका सिंहासन खत्म, आपका राज्य खत्म, अब आपको उस जंगल में डाल दिया जाएगा। तो संधि के अनुसार अब क्या बोल नहीं सकते और पछताने लगे कि अब क्या हुआ, अरे बाप रे, डाल दिया जाएगा। बोला हाँ, एक दिन भी नहीं, एक क्षण भी नहीं। और उनको सेनापति ने आदेश दिया, पकड़कर उस राज्य के घनघोर जंगल में डाल दिया। अब दूसरे दिन से दूसरे राज को राजकुमार को बुलाया और उनके सामने भी यही शर्त रखा कि शर्त यह है 3 साल तक आप राजा रहेंगे। तो वो भी सोचा कि ओहो, वो राजा हुआ था तो कितना अच्छा अच्छा राजकुमारियों से शादी किया, कितना बड़ा बड़ा गाड़ी ला दिया, उसने भी MBA किया था, उसको भी नौकरी मिला तो कितना अच्छा से रह रहा था, हमको भी करना है। तैयार हो गया तो ठीक है, बैठिए 3 साल तक तो भोग करेंगे हम। बिठा दिया गया और उसी के अनुसार वो भी आदेश देने लगा। उसके यहाँ वो TV था तो हमारे यहाँ वो फ्लैट TV 36 इंच का होना चाहिए, उसका 36 इंच, हम कहा 72 इंच का TV ला दो हमारे बंगले में, और वो जो गाड़ियाँ जूनी हो चुकी नई ला दो, हमारे सोफा सेट बदल दो, हम और नई कई राजकुमारियों से ब्याह करेंगे। रोज बस भोग का यही आदेश देते रहे और भोग करते रहे। उसके ये था, उस राजा के घर बंगले में ये था तो हमारे बंगले में ये होना चाहिए, उसका वो गाड़ी था तो हमारा ये गाड़ी होना चाहिए, उसकी 3 पत्नियां थी तो हमारी 5 होनी चाहिए। ऐसे करते 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 उसका भी 3 साल बीत गया और उसको भी पकड़कर उस घनघोर जंगल में डाल दिया गया। ऐसे करते करते कई राजकुमार इस प्रकार घनघोर जंगल में डाल दिए गए। लेकिन अब परमानेंट राज कौन करेगा? अंत में एक राजकुमार आया और वो भी तैयार हुआ कि हाँ, मैं तैयार हूं। राज्य सिंहासन पर बिठा दिया गया। बिठाने के बाद प्रातःकाल जब सेनापति और मंत्री उपस्थित हुए, महाराज अब आपका क्या आदेश है? वो सोच रहे थे वो ये भी ऐसा ही आदेश देगा, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा, पहला ही आदेश दिया मंत्री और सेनापति से, हमारा पहला आदेश यह है कि वो जो घनघोर जंगल है उसमें पहले आग लगा दो, जहां तुम हमको डालने वाले हो। और आग लगाकर बहुत ही सुंदर उद्यान बना दो उसको। मंत्री का तुरंत पता चल गया कि ओह, यही बुद्धिमान है, ये राज्य तो करना चाहता है लेकिन साथ साथ में इस राज्य को पूरा करने के बाद जहां जाना है उस घनघोर जंगल को भी वो स्वर्ग में बदलना चाहता है। तो संसार का भोग तो कर रहे हैं, करना है संसार में। देखिए, घर गृहस्थी है तो घर गृहस्थी में आदमी जाकर भोग करता है। इसी अगर वो जो गृहस्थी वही ग्रस्त जीवन को स्वीकार करते हैं जो डायरेक्ट भगवान का भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो हमारे शास्त्र छूट देते हैं कि ठीक है, ब्रह्मचारी के बाद अगर आप कुछ आपकी इच्छा है तो आप घर गृहस्थी में जाइए, लेकिन आप राजा बनिए, ठीक है, राज्य का भोग कीजिए, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखिए कि ये जो आप भोग कर रहे हैं ये आपको नरक में ले जाएंगे, इसलिए पहले उस स्थान को भी सुधार दीजिए। मतलब हमको जहां जाओ हमारा गंतव्य है वो घनघोर जंगल नहीं, स्वर्ग होना चाहिए। कभी कभी वैकुंठ को भी स्वर्ग कहते हैं क्योंकि वहां सुख है, इसलिए स्वर्ग का अर्थ है जहां सुख है उसको स्वर्ग कहते हैं। तो व्यक्ति को ये संसार घर गृहस्थी में रहते हुए भी या भोग करते हुए भी ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जीवन एक दिन अंत हो जाएगा और अंत के बाद इन भोगों के कारण हम नरक में ना चले जाएं। ये है बुद्धिमान बुद्धिमता। तो उस मंत्री और सेनापति ने आदेश दे दिया कि अब यही चिरकाल तक राज्य करेगा, यही राजा बुद्धिमान है। तो वही व्यक्ति बुद्धिमान है। इच्छाएं तो हैं हमारी संसार के, जैसे यदु महाराज से जब जवानी मांगा था ययाति ने, तो यदु महाराज ने मना कर दिया कि जब तक व्यक्ति संसार के भोगों को भोगने की अंदर कामना रह जाती है और अगर वो फिर भक्ति में भी जाता है तो आध्यात्मिक उन्नति करने में उसको ये बहुत बड़ा बाधा बनता है। लेकिन जब संसार के भोगों को भोग लेता है तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है कि नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई सुख नहीं है। क्या संसार के भोग कैसे हैं, जब जानता है तब पता चलता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक लड़का था, छोटा लड़का, जो रोज जाकर एक बगीचे में बैठता था। एक दिन क्या हुआ, एक बुढ़िया, बहुत आयु हो चुकी है, कमर झुक चुकी है और मुंह से कफ निकलता है, थूक निकलता है, ऐसी बुढ़िया वहां आई और हाथ में कुछ बादाम लेकर आई और बादाम देखा कि ये लड़का बैठा है तो उस लड़के को दे दिया। तो वो बादाम, वो लड़का देखा, बादाम, अरे वाह, वो भी अमेरिकी, ये अमेरिकन बादाम, वो खाया, खाया बहुत अच्छा। तो दूसरे दिन भी वो आया उस उद्यान में उसी समय, तो वो बुढ़िया भी आई बादाम लेकर, दूसरे दिन भी उसको दे दिया बादाम, वो खाया, बहुत आनंद आया। तो उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा है, बिना पैसे से हमको रोज बादाम मिल रहा है और अमेरिकन बादाम मिल रहा है। तो ये क्रम चलता रहा, रोज वो समय पर वहां आता है, वो बुढ़िया भी आती है, मुंह में से कफ गिर रहा है, थूक गिर रहा है ऐसी, लेकिन बादाम दे रही है तो खा रहा है, खा रहा है। बहुत दिनों के बाद उस लड़के में एक प्रश्न उठा कि ये बुढ़िया मेरे को कुछ लगती नहीं है, कुछ नहीं है, और ये बादाम मुझको रोज क्यों देती है। तो उसने प्रश्न पूछ लिया कि माँ जी, ये बादाम आप रोज मुझको क्यों देती हैं, क्या बात है। तो वो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मेरा एक बेटा अमेरिका है और वो मेरे लिए कैडबरी चॉकलेट खाता है, तो चॉकलेट के ऊपर ऊपर वो कैडबरीज होता है, मावा होता है, और अंदर बादाम होता है, तो चूंकि मेरे दांत तो है नहीं तो मैं ऊपर ऊपर का वो मलाई मलाई खा जाती हूं और ये बादाम जो बचता है वो मैं तेरे को दे देती हूं। उसने उस बुढ़िया की मुंह तरफ देखा, मुंह में कफ गिर रहा है, थूक गिर रहा है, और इतना झूठा बादाम मैं इतने दिन से खा रहा था, छे 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 छे। ये बुद्धि होना चाहिए, संसार के भोग भोगते भोगते छे छे छे, अरे बाप रे, ये भोग जो सूअर को भी प्राप्त है उसी भोग में मैं पड़ा हुआ था, ऐसी ये बुद्धि होना। हम देखेंगे आगे महाराज ययाति जो हमको श्लोक दिया गया था याद आए, उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं इन भोगों को छोड़ दूंगा। तस्मात एतान त्यक्त्वा, तस्मात एतान, मैं इसलिए तस्मात, मैं इसलिए मैं छोड़ दूंगा, मैंने हजारों हजारों वर्ष तक ये संसार के भोग भोगे, लेकिन आज तक मैं बुढ़ा हो गया फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं, बेकार है ये भोग, तो ये भोग भोगने में संतुष्टि नहीं हो रही है। इसलिए स्वयं निर्णय पर आ गए कि नहीं नहीं, ये संसार के जो भोग हैं ये मुझको सुखी नहीं कर सकते, मैं असंतुष्ट ही रहा था, जितना भोगता हूं असंतुष्टि बढ़ती जाती है। इसलिए एतान एतान तस्मा देतान, इसलिए एतान त्यक्त्वा, मैं इनको त्याग दूंगा, है छोड़ दूंगा। ये वास्तव में व्यक्ति को स्वयं निर्णय करना चाहिए है? जब तक व्यक्ति का मति भोगों के प्रति आसक्त रहा रहता है तब तक वो भक्ति में नहीं आ सकता। इसलिए भक्ति के, देखिए कभी कभी लोग पूछते करते हैं कि ये कई प्रकार के आसन प्राणायाम साधना जो की जाती है, तो ये सब साधन जो होते हैं ये इंद्रियों को विषयों से हटाने के लिए और मन को शुद्ध करने के लिए, विषयों से शुद्ध करने के लिए कई योगा और प्राणायाम बताए गए हैं। जैसे भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को भी बताते हैं ये सब है? योग पद्धति बताते हैं। तो ये योग पद्धति जो होती है उसका यही एक होता है कि विषयों से इंद्रियों को हटाया जाए और मन को केंद्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए। उसके लिए अनेक अनेक प्रकार के साधन शास्त्र में बताते हैं, स्वयं भगवान भी बताते हैं। तो उन साधनों का इतना ही मात्र उपयोग होता है विषयों से हटाना। तो स्वयं को भी ये निर्णय करना चाहिए, वास्तव में संसार के भोग मेरे को सुख नहीं दे सकते, संतुष्टि नहीं दे सकते, महाराज जयाति ये भोग कर ये निर्णय दे देंगे। ऐसे ही जो राजाओं का वर्णन या भोग जो भोग भोग रहे हैं वो निर्णय देते हैं, अपना रिजल्ट देते हैं कि वास्तव में संसार के भोगों में कोई आनंद नहीं, कोई रुचि, कोई ये आपको सुख नहीं दे सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर आपको संतुष्ट और सुख चाहिए तो मात्र कृष्ण भक्ति में ही सुख है, ये निर्णय दिया। जब व्यक्ति इस बात को सुनता है कि ओहो वास्तव में ये जीवन का उद्देश्य लक्ष्य है, हैं कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम, तभी तो ये लोग इस प्रकार का सुविधा होते हुए भी इनको त्याग कर जंगल में चले गए, और जंगल में गए तो उन भोगों को कभी याद नहीं किया। भगवान का जब भक्ति करने लगे भी ऐसे लगभग देख लिए, जो बड़े बड़े राजा थे और संसार को भोग कर जंगल में गए तो कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिल रहा कि फिर से उनको भोग भोगने की कामना हुई नहीं। क्यों? क्योंकि वो जैसे कोई व्यक्ति मल को त्याग कर चला जाता है तो उस मल को कोई याद नहीं करता है, मल को त्यागता है तो उसको पहले तो थोड़ा सुख मिलता है, त्याग में सुख मिलता है, और उसके बाद जब वो भक्ति में लग जाता है तो और सुख में वृद्धि होती है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम। क्योंकि भक्ति में लग जाता है, उसको त्यागा और फिर वो भक्ति में लग गया, भगवान की शरण को ले लिया, कृष्ण की जब शरण ले लेता है तो वो उसमें पूर्णतया सफल हो जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि संसार को छोड़ देता है, कठोर तपस्या में लग, लेकिन जब तक वो भगवान विष्णु कृष्ण की शरण ही लेता है तब तक उसके लिए फिर गिरने का संभव बात आता है। लेकिन जो कृष्ण का शरण ले लिया, क्यों? क्योंकि एक तो वो मल की तरह त्याग दिया तो उसको त्याग से संतुष्टि हुआ, और उसके बाद उसने कृष्ण का शरण लिया। ये बात ये जाती 19वें श्लोक में भी कहते हैं, कहा है तस्माद एताम अहम त्यक्त्वा ब्रह्मण अध्याय मानसम, ब्रह्म में मैं मेरे मन को लगाने का अभ्यास करूंगा, भगवान में मन लगाऊंगा, है भगवान में चित्त लगाऊंगा। ये उन्होंने त्यक्त्वा मैं छोड़ दूंगा, ये संसार के भोगों को छोड़ दूंगा, और छोड़कर ब्रह्मण अध्याय मानसम मेरे मन को मैं भगवान कृष्ण में लगाऊंगा। वैसे ये पहले से भी कृष्ण भक्ति करते थे, इसलिए इसके आगे के श्लोकों में एक शब्द आया है कि उन्होंने इस प्रकार से छोड़ दिया। जैसे 24वें श्लोक में बताते हैं, हाँ क्षणेन मुमुचे नीडम जात पक्ष इव द्विज, द्विज द्विज कहते हैं पंछी को, पंछी के बच्चे को द्विज कहते हैं। द्विज इसलिए कहते हैं, द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म, दो जन्म लेने वाला, दूसरा जन्म को द्विज कहते हैं, तो पंछी को भी द्विज कहते हैं क्योंकि उसका भी दो जन्म होता है। एक बार तो माँ से जन्म होता है अंडे के रूप में, और फिर अंडे से जन्म होता है दूसरा, इसलिए द्विज कहते हैं। तो जिस प्रकार क्षणेन मुमुचे, एक क्षणेन मुमुचे नीडम जात पक्ष, जैसे बच्चे के पंख निकल जाते हैं तो पंख निकलते ही वह बच्चा जो एक दाने के लिए भी अपने माँ पर आश्रित रहता है, लेकिन उस बच्चे के जैसे ही पंख निकल जाते हैं तो वो घोंसले से उड़ जाता है, घोंसला छोड़कर जैसे उड़ जाता है, ऐसे ही महाराज जयाति को जब ये ज्ञान हो गया तो वे उस पंछी की तरह तुरंत घर गृहस्थी को त्याग कर जाने के लिए तैयार हो गए। बहुत बहुत शिक्षा है इसमें, और उन्होंने ये शिक्षा जो चल रही है उसमें वो बकरे और बकरी की कथा सुनाते हैं। ये बकरे बकरी की कथा क्यों सुनाते हैं? खुद को तो वैराग्य हो गया, लेकिन वे अपनी पत्नी को भी चाहते हैं कि उसको भी वैराग्य हो जाए। ये पति का धर्म है, पति गुरु होता है, और पति का धर्म है कि वो अपनी पत्नी को भी भगवान की भक्ति में लगाने के लिए उसको भी संसार से वैराग्य उत्पन्न, भोगों से वैराग्य उत्पन्न करे और भगवान की भक्ति में लगाए। तो ये उत्तरदायित्व पति का होता है। अगर ये पति नहीं कर पाता तो बोलते पति नहीं बनना, तीनशया उसको पति नहीं होना चाहिए। तो ये कथा वो देवयानी को सुना रहे हैं ताकि वो भी संसार के भोगों से मुक्त हो जाए, ये पति का धर्म होता है। इस प्रकार वैसे तो हमको श्लोक दूसरा दिया गया था और इस श्लोक पर बोलना पड़ा तो कुछ हो जाता है, कन्फ्यूजेशन हो जाता है। लेकिन खैर ये जो प्रसंग है उसका जो क्या सार है उसके विषय में हमने थोड़ा सा कहा और 19वां श्लोक बाकी रह गया, तो आगे व्याख्या की जाएगी। तो यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आज का जो प्रसाद है, खिचड़ी प्रसाद और दोपहर का प्रसाद, दोनों ये नए मंदिर के निचले वाले में होंगे, तो सब भक्त वहाँ प्रसाद लेने के लिए जाएंगे। वहाँ उस भक्ति वेदांत हॉल में कोई नहीं जाएगा प्रसाद के लिए, वहाँ आज दूसरा शादी का कार्यक्रम है और टाइम तो हो गया है, लेकिन किसी का एक आध प्रश्न है तो ले लेते हैं। कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय, गौर निताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, सब वेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर।